मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 8 मई 2017 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अनुपम कुमार झा, सुपौल बिहार से हैं, गेंदा लाल आप उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, और हेमंत कुमार आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। तो अनुपम, गेंदा और हेमंत, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके स्वागत और अपने तीन मित्रों के स्वागत के बाद अब मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा गजेंद्र सिंह जलाल को, जो हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने ईमेल के द्वारा सूचित किया है, नैनीताल के रहने वाले हैं, कि उन्होंने उत्तराखंड के पीएससी एग्जामिनेशन का प्री क्वालिफाई कर लिया है। तो गजेंद्र, इस सफलता के लिए हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आप मेंस और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें, इसके लिए हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मैं गजेंद्र ने जो मेल लिखा है वह आप लोगों को पढ़कर सुना दूं। छोटा सा मेल है, उन्होंने लिखा है कि सर प्रणाम, सर एंड मैडम, सर आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से मेरा यूके पीएससी में प्रीलिम्स निकाल चुका है हूं। सर, इसके लिए आपका दिल से आभारी हूं। ये सब आपके गाइडेंस और मोटिवेशन से संभव हो पाया। सर, 15 दिन की क्लास में मैंने जो सीखा और पाया वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। उस क्लास के बाद अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस रहा हूं। सर, जब कभी डीमोटिवेटेड होता हूं तो आपकी वो बातें जो क्लास में बताई थी याद करता हूं और साथ में लाइफ मैनेजमेंट वाला ऑडियो सुन लेता हूं। सर, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने के लिए। सर, आपका गाइडेंस यूके पीएससी मेंस और यूपीएससी प्री 2017 के लिए आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार सर एंड मैडम, गजेंद्र सिंह जलाल, नैनीताल इन ब्रैकेट उत्तराखंड, फिफ्थ बैच AFEIS क्लास। मित्रों, ये उनका छोटा सा ईमेल है। तो गजेंद्र, एक बार फिर से इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बधाई देना चाहूंगा एक अलग तरह के समूह को, सच पूछे तो अभिनंदन करना चाहूंगा, और मैं ये अभिनंदन कर रहा हूं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के समस्त लोगों का, और इसलिए कि श्री गंगानगर से मेरे एक बैचमेट भी थे, हैं अभी भी, और श्री गंगानगर से हमारे यहाँ क्लासेज में स्टूडेंट भी बहुत आते हैं, लेकिन अभिनंदन का की वजह केवल यही नहीं है। आज मुझे अखबार में एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी पढ़ने को मिली, और खूबसूरत स्टोरी ये कि गंगानगर का एक गांव है लखासर। लखासर गांव में लगभग उसके आसपास 10,000 के करीब हिरण रहते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में ये देखा गया है कि हर साल प्यास से 50-60 हिरण की मौत हो जाती थी। तो अब गांव वालों ने उसके लिए जो तरीका निकाला उनको बचाने के लिए, वो ये कि उन्होंने जो आपके पॉलीथीन होते हैं, पॉलीथीन की डिग्गियां बनाई, लगभग वहां 66 डिग्गियां बनाई हैं, और उसमें वो पानी भर देते हैं। हर 10 दिन में वो पानी भर देते हैं, वहां हिरण आते हैं और पानी पीकर चले जाते हैं, और इन डिग्गियों का जो खर्चा भी है वो लगभग 2 लाख रुपए का है, जो गांव वाले खुद उसे सहन मतलब उठाते हैं, वो जो खर्चा है वो खुद उठाते हैं। मित्रों, कितना खूबसूरत काम श्री गंगा नगर के लखासर गांव के लोगों ने किया है। इसका नेतृत्व किया पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट का अनिल धारणिया ने, और गांव के 200 लोगों ने मिलकर फिर 40 डिग्गियां बनाई। तो मित्रों, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा धर्म कोई और दूसरा हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से श्री गंगा नगर की पूरी जनता का अभिनंदन करना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और ये जो मेरा आभार है वो मेरे सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से है, एकेडमी की मेरी पूरी टीम की ओर से है, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से है और मेरी ओर से भी है। और खासकर जो श्री गंगानगर के जो स्टूडेंट यहां हमारे यहां आते हैं और जो आने वाले हैं, उनकी तरफ से भी है और उनके लिए भी है। तो दोस्तों, अब आइए हम आते हैं अपने रोजाना की प्रक्रिया पर, प्रणाली पर, और बात करते हैं अब न्यूज एनालिसिस की। दोस्तों, पहले मैं थोड़ी सी न्यूज के बारे में आपको बता दूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे लगी कल के AIR न्यूज में, वो थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को लेकर। पूर्वोत्तर, अभी आपने देखा कि अमित शाह जी भी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो गए हुए हैं उस क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री जी ने भी उद्घाटन किया है, एक प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। उस उद्घाटन के दौरान उन्होंने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, वो सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। और इस टॉपिक को पकड़कर आपको इसके ऊपर मैटर जुटाना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसे हिंदी में हम पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं, उसे हम साउथ ईस्ट एशिया का गेट बनाएंगे, द्वार बनाएंगे साउथ ईस्ट एशिया का। आपको मालूम है कि साउथ एशिया के लिए भारत ने अभी सैटेलाइट छोड़ा है, और साउथ ईस्ट एशिया के पूरे वो जो हिस्से हमारे, अगर नॉर्थ ईस्ट को आप देखेंगे तो वो साउथ ईस्ट एशिया से ही वो पूरा का पूरा हिस्सा जुड़ता भी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें भी बताई हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। देखिए फ्रेंड, जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। आप अगर सीधे सीधे ये लिखेंगे कि सरकार उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए पर्यटन का बहुत विकास करने की सोच रही है, और वहां के लोगों को बहुत मदद दी जा रही है, और इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, बागवानी को महत्व दिया जा रहा है, तो ठीक है, अपने आप में ये सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। मतलब आप अपनी बात कंटेंट के साथ नहीं कह पा रहे हैं, जो सिविल सर्विस का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। न्यूज को आपने ध्यान से सुना ही होगा, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद कंटेंट प्रोवाइड किया है, क्योंकि कंटेंट जब हम दे देते हैं, जब तथ्य दे देते हैं, उसकी सत्यता बढ़ जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के शब्द याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने 40,000 करोड़ रुपए वहां रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं। अब एक कंटेंट हो गया, रोड विकसित किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ये एक सामान्य तथ्य हो गया, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए हमने इसके लिए दिए, वो एक तथ्यात्मक सत्य हो गया। फिर उन्होंने कहा कि रेलवे के 19 बड़े प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, रेलवे के मतलब नॉर्थ ईस्ट को पूरा रेलवे से आपस में जोड़ा जा रहा है, और उसमें फिर से उन्होंने कंटेंट दे दिए 19 बड़े प्रोजेक्ट। अब ये दो उन्होंने कंटेंट के साथ बात कही, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वहां हम उड़ान, जो उड़े देश का आम नागरिक, उसकी कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, वो बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और पर्यटन पर ध्यान दे रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात कही थी स्वच्छाग्रह की, जो नया शब्द वो लेकर के आए हैं। अभी तक हम स्वच्छता अभियान कर रहे थे, अब उन्होंने सत्याग्रह की तर्ज पर एक बड़ा खूबसूरत शब्द इजाद किया है, स्वच्छाग्रह की, मतलब स्वच्छता के लिए हमारे मन में आग्रह होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार करेगी, नगर निगम करेगा, हम खुद करें भी, और उसकी डिमांड भी रखें कि नई चीजें स्वच्छ होनी चाहिए। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लीज इस टॉपिक को नोट करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं इसके बारे में, वो आपको नोट करते जाना चाहिए। दोस्तों, एक जो दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर थी, जिधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो थी कि जो BSF और ये जो इस तरह की जो फोर्सेज होती हैं, इनकी जो कमान है, ये कमान कोलकाता से शिफ्ट करके अब रायपुर कर दिया गया है। आखिरी में ये खबर थी, क्योंकि अभी नक्सलियों के संकट थोड़े से ज्यादा गहरे हो गए हैं, और आपको मालूम है कि नक्सलियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे गृहमंत्री करेंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें आ रहे हैं, और यहां तक कि उन राज्यों के कलेक्टर और SP भी उस मीटिंग में आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह मीटिंग है, इस पर ध्यान रखिएगा। कल डेफिनेटली अखबारों में इसके ऊपर चीजें आएंगी कि अब गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटजी बना रही है, क्या रणनीति बना रही है। अगर आपने कल डीडी न्यूज सुना हो तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताया गया था और कुछ आंकड़ों के आधार पर यह दिखाया गया था कि पिछले 3-4 सालों में गतिविधियों में तो कमी आई है, लेकिन फिर भी हम अभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अब देखा भी आपने कि कुछ ही दिनों पहले 25-26 हमारे नौजवान किस तरीके से मारे गए हैं और लगातार कुछ न कुछ घटनाएं घटित भी हो रही है। तो एक तो पूरे के पूरे जो मुख्यालय है कमान का, मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया है रायपुर, ताकि वहीं रह करके चीजों को बहुत नजदीक से और तुरंत देखा जा सके। ये एक डिसीजन है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, और बाकी अभी हम लोगों को पता लगेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये शुरुआत में जो कलकत्ता में रखा गया था वो इसलिए क्योंकि जो नक्सलवाड़ी एक जगह है कलकत्ता में, एक जगह है कोलकाता में, कोलकाता में जगह नहीं है, ये आपके वहां दार्जिलिंग में एक जगह है नक्सलवाड़ी, दार्जिलिंग में भी नहीं है, वो एक थोड़ा सा हट करके है, एग्जैक्ट चलिए मैं वेस्ट बंगाल में के बॉर्डर पर है वो जगह, हम लोग वहां देख करके भी आए थे, स्थान का नाम मैं एकदम भूल रहा हूं, क्षेत्र का नाम ही है नक्सलवाड़ी, वहां से नक्सलवादी उभरे हैं। तो उस समय उनकी गतिविधियां उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती थी, तो बट नेचुरली उसकी कमान उस समय वहां रखी गई थी। अब कलकत्ता में तो ये स्थिति ज्यादा नहीं रहेगा, नक्सलवादी उपद्रव ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन अब ये इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये जो एक रेड कॉरिडोर जो बन गया है और वहां इनकी गतिविधियां ज्यादा है, तो ऐसे समय में यह निर्णय लेना कि अब उसको रायपुर शिफ्ट किया जाए, मैं समझता हूं कि शायद बहुत ही सामयिक और बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसके बाद मित्रों, एक जो खबर थी, छोटी सी ही खबर है, वो फ्रांस में अभी चुनाव हुए हैं और फ्रांस के चुनाव में न्यूज में हालांकि वो बात नहीं दी है, लेकिन सुबह के अखबारों में दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति मैंक्रो जो हैं वो जीत गए हैं और काफी अधिक वोटों से जीते हैं, और हालांकि उनकी 39 ईयर्स है, बहुत ही कम उम्र के राष्ट्रपति हैं मैंक्रो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको क्यों पूरी दुनिया देख रही थी। अब ठीक है, फ्रांस के चुनाव है, नो डाउट फ्रांस एक विकसित राष्ट्र है और महत्वपूर्ण राष्ट्र है, ऐसे में उसके चुनाव थोड़े से मायने रखते हैं पूरी दुनिया के लिए, लेकिन दुनिया की निगाह जो इस पर थी, इंटरनेशनल अफेयर्स की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, वो इसलिए थी कि वहां जिन दो पार्टियों में चुनाव हो रहे थे उसमें एक तो मध्यम मार्गी थे जिनकी जीत हुई है और दूसरे घोर दक्षिणपंथी थे। अब पता नहीं मध्यम मार्गी और दक्षिणपंथी मेरे कहने से चीज बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, दक्षिणपंथी तो यह, जैसे कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं कि उन्होंने दक्षिणपंथी जो उनकी जो लीडर थी, जो पैन उनका सरनेम था पैन, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम प्रवासियों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने यहां से सारी मस्जिदों को बंद कर देंगे, इस तरह के वक्तव्य उन्होंने दिए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रांस में भी आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके लिए बस इन्हीं गुटों को, तालिबान टाइप के आईएसआईएस वाले जो लोग हैं इनको जिम्मेदार माना जाता है, जो एक तरीके से अपने को बड़ा इस्लाम धर्म का अनुयायी और उसकी रक्षा करने वाले फौजी कहते हैं तथा कथित रूप से। तो ऐसे में पैन को लगा कि जनता की भावनाओं का फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि फ्रांस की जनता नो डाउट की आतंकवादी गतिविधियों से तो कोई भी त्रस्त होगा, तो उसका उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। फर्स्ट राउंड में उन्होंने जबरदस्त टक्कर भी दी, दोनों के बीच में बहुत कम फासला था, लेकिन सेकेंड राउंड में वो काफी पिछड़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो पूरी दुनिया इस घटना को जिस रूप में ले रही है वो ये कि जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं, नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है कि उनका दुनिया पर कब्जा होने जा रहा है, इस रूप में ले रहे हैं। मध्यम मार्गी जो है वो है कि बीच का रास्ता लेकर के चलते हैं, है ना, जैसे कि एक भारत को कह लीजिए कि आप एक बीच का रास्ता लेकर चलते हैं, हालांकि हम तो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष ही हैं, तो हमारा रास्ता तो बहुत ही क्लियर है, समन्वय का रास्ता है, काफी कुछ उसी तरह का रास्ता मध्यम मार्गी में भी होता है कि नहीं ठीक है आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे, सभी समान हैं, सभी नागरिक हैं, सभी को रहने का अधिकार है, तो वो कोई बहुत उग्र कदम नहीं उठाएंगे। पैन जो थी वो उग्र कदम उठाने वाली थी। सबसे बड़ी राहत की सांस पूरे के पूरे यूरोपीय देशों ने ली होगी, और इसलिए ली होगी कि यूरोपियों को लगने लगा था कि अगर फ्रांस में पैन जीत जाएंगी तो, अभी तो ब्रेग्जिट हुआ है, फिर लोग कह रहे थे कि फ्रेग्जिट हो जाएगा का मतलब है कि फ्रांस भी कहीं इस तरह का निर्णय न ले कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। और सोच कर देखिए कि अगर फ्रांस भी ये निर्णय ले ले कि हमें ब्रेक्जिट की तरह ही अब यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, तो एक बहुत ही खतरनाक शुरुआत हो जाएगी। हालांकि ब्रिटेन ने वो शुरुआत कर दी है, लेकिन वो और भी ज्यादा बुरी स्थिति होने लगेगी। तो उस लिहाज से भी जो फ्रांस में मिस्टर मैंको की जो जीत है, वो न केवल फ्रांस को ही, न केवल यूरोपियन यूनियन को ही, बल्कि सच पूछे तो पूरी की पूरी दुनिया को काफी एक सुकून देने वाला परिणाम है। तो मित्रों, एक फिर छोटी सी जो खबर थी वो रेल विकास प्राधिकरण की स्थापना को लेकर के थी, रेलवे में जो सुधार होने चाहिए, जो रेलवे की व्यावहारिकता होनी चाहिए उसको लेकर। ये न्यूज पहले भी आ चुकी है और मैंने इसके ऊपर, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको कुछ एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किए हैं और हम लोगों ने थोड़ी बहुत इस पर बात भी की थी। तो दोस्तों, न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें एक जो क्लिपिंग है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग है, इंटरव्यू फॉर्मेट में। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और लॉ कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने जो न्यायपालिका की जो अभी स्थिति है ना, कि न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, ओवर रीच की बात करते हैं, को गवर्नेंस की बात करते हैं, कि जो जुडिशरी है अब एक तरीके से को गवर्नेंस के रोल में आ रही है। मतलब गवर्नेंस तो नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं बन गई है, लेकिन को गवर्नमेंट के रोल में आ रही है। उसको लेकर के एक इंटरव्यू है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं देख रहा हूं कि हर साल किसी न किसी तरह से मेंस में क्वेश्चन आ ही जाता है। और मैं आप लोगों से यह भी वायदा करता हूं कि चूंकि ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, तो इसका इंग्लिश अनुवाद भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो मित्रों, ये आर्टिकल देख लीजिएगा और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, आज बहुत कम संख्या है इनकी, ये आप लोग देख लेंगे और अपने जरूरत के हिसाब से उनका उपयोग कर लेंगे। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स से इतना ही। अब मैं आता हूं हमारे डेली ऑडियो लेक्चर के अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण होता है। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैंने देखा कि कभी कभी कुछ विचित्र सी चीजें होती हैं। मतलब कभी तो ऐसा होता है कि ईमेल लिखने वाले सभी जो फ्रेंड्स होते हैं वो फिर अपने स्थान का नाम और स्टेट का नाम लिखते हैं। अभी तक लगभग लगभग यही चल रहा था, लेकिन मैं पिछले दो दिनों से देख रहा हूं कि जैसे शायद सभी ने आपस में मिलकर फैसला कर लिया हो कि हमको अपने स्थान और स्टेट का नाम नहीं लिखना है। हालांकि ऐसा कोई फैसला होता नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे एक अप्रत्यक्ष रूप से एक जैसी सोच लगभग लगभग सबके अंदर प्रिवेल कर जाती है, मौजूद हो जाती है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे, इसमें से तो जगह का नाम और स्टेट का नाम गायब ही है। तो आज मैं जब नाम लूंगा तो आप देखेंगे कि मैं स्टेट और उनके स्थान का नाम लेने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनुरोध भी करना चाहूंगा कि प्लीज, जब आप अपना नाम लिखते हैं तो अपनी जगह का नाम लिखिए, अपने स्टेट का भी नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए कि आप किस जगह से हैं और किस राज्य से हैं। तब आपका एक कंप्लीट आपकी आइडेंटिटी बनती है और वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस काम को कर रहे, चाहे हम छोटा सा ही मेल क्यों न लिख रहे हों, उसे पूरी तरह से करें, वो संपूर्णता में होनी चाहिए। मतलब कोई भी छोटी सी चीज इस तरह की न हो जिसको देखने के बाद हमारे खंडित व्यक्तित्व का पता लगे, हमारे फ्रैक्चर्ड हमारी पर्सनैलिटी इमर्ज हो, कंप्लीट हमारी जो पर्सनालिटी है इमर्ज होनी चाहिए। तो मुझे यकीन है कि आप सब इसे गंभीरता से लेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, आनंद रावत, प्राची सिंह चंदेल, अमर मंडोल कोलकाता वेस्ट बंगाल से, सोनल इंदौर मध्य प्रदेश से, मयंक जोध, तुषार परेरा, प्रभात यादव, पूनम सागर, संजय चौहान और प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।